आज हम ओपनिंग ऑफ जापान अर्थात जापान में पश्चिमी देशों का प्रवेश पर अपनी चर्चा करेंगे। आइए उन घटनाओं पर एक नज़र डालें जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि जापान में पश्चिमी देशों का प्रवेश हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक जापान एक मध्यकालीन और पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। बाहरी दुनिया के साथ उसका किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं था। जापान के लोग अपने को संसार की श्रेष्ठतम जाति मानते थे, इस कारण वे अन्य जातियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते थे। तोकुगावा शोगुनों के शासन में जहां एक ओर जापान में राजनीतिक उथल पुथल समाप्त होकर आंतरिक शांति स्थापित हुई, वहां लगभग 250 वर्षों के एकांतवास के कारण जापान विदेशी युद्धों एवं आधुनिक सैन्य विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान से अपने वंचित रहा। शोगुन शासन व्यवस्था की दीर्घकालीन शांति के वातावरण में सैन्य देश पर से शोगुन का नियंत्रण निर्बल होता गया। गंभीर आंतरिक तथा बाह्य समस्याओं का सामना करने की क्षमता इस प्राचीन शासन पद्धति में ना रह गई थी। इधर पश्चिमी देश जापान के संबंध स्थापित करने के लिए तत्पर हो रहे थे। जापान के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना का प्रयास रूस, इंग्लैंड और अमेरिका कर रहे थे। रूस की जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की हार्दिक इच्छा थी और वह इस संबंध में जापान की सरकार से बातचीत करने का इच्छुक था। इसके लिए वह उचित अवसर की खोज में था। इसी बीच एक जापानी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके नाविक अपना मार्ग भूल गए। इन नाविकों को रूस ने सहायता दी। इन मलाहों को जापान पहुंचाने में रूस का उद्देश्य जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था, परंतु जापान रूस के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए सहमत नहीं था। अतः रूस के इस प्रतिनिधिमंडल को अपने उद्देश्य में सफलता ना मिली और वह अपने स्वदेश वापस आ गया। सखालिन द्वीप पर रूस तथा जापान का संयुक्त अधिकार था। कुरील द्वीप समूह पर रूस का अधिकार था। यही कारण था कि रूस जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए इच्छुक था। इसी उद्देश्य से रूस ने 1804 ईस्वी में रेजनोव के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल जापान भेजा। इस प्रतिनिधिमंडल ने नागासाकी पहुंचने पर जापान की सरकार से व्यापार संबंधी बातचीत आरंभ की, परंतु इसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। वास्तव में जापान की सरकार रूस के साथ कोई भी व्यापारिक संबंध स्थापित करने को तैयार नहीं थी। रूस की सरकार ने जापान के इस प्रकार के व्यवहार को अपना अपमान समझा तथा उसने 1806 और 7 ईस्वी में अपने जल सेना के अधिकारियों को सखालिन तथा कुरील द्वीप समूहों में जापानी व्यापारिक अड्डों पर आक्रमण करने को भेजा। इस प्रकार दोनों देशों के संबंध में कटुता उत्पन्न हो गई। 1811 ईस्वी में जापानी सरकार ने रूसी अधिकारी को बंदी बना लिया। रूस इससे चिंतित हो उठा। उसने जापान को विश्वास दिलाया कि 1806-7 ईस्वी के आक्रमणों के संबंध में वह निर्दोष है। जापानी सरकार ने रूस से इस प्रकार आश्वासन प्राप्त होने के उपरांत ही रूसी अधिकारी को मुक्त किया। इस प्रकार रूस ने जापान के साथ संबंध स्थापित करने का बहुत प्रयास किया, परंतु जापान सरकार की दृढ़ता के कारण रूस असफल रहा। इसी बीच यूरोप में नेपोलियन के युद्ध आरंभ हो गए और रूस उधर व्यस्त हो गया। ब्रिटिश प्रयास। रूस के उपरांत ब्रिटेन ने जापान में प्रवेश करने का प्रयास किया और उसने जापान के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के प्रयत्न किए। ब्रिटेन ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कैप्टन कुक को जापान जाने का आदेश दिया, किंतु दुर्भाग्य से जापान पहुंचने से पूर्व ही उसका देहांत हो गया। 1773 ईस्वी में ब्रिटेन ने पुनः जापान जाने का प्रयास किया और मैकार्टन को जापान जाने की आज्ञा दी, लेकिन ब्रिटेन का यह प्रयास असफल रहा। 1808 ईस्वी में ब्रिटेन का एक जहाजी बेड़ा नागासाकी में उतरा तथा उसने बमबारी की धमकी देकर वहां से कुछ माल खरीदा। 1818 ईस्वी में ब्रिटेन का एक जहाज एदो की खाड़ी में प्रवेश कर गया। 1819 ईस्वी में ब्रिटेन ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया। इसके फलस्वरूप पूर्वी सागरों में ब्रिटेन की गतिविधि में तीव्रता आ गई और वे किसी प्रकार जापान में प्रवेश पाने के लिए प्रयास करने लगे। रिक्यू द्वीपों के माध्यम से थोड़ा बहुत व्यापार भी आरंभ हो गया। इस क्रम में अंग्रेज और जापानी नाविकों में 1824 ईस्वी में एक मामूली टक्कर हुई। इससे चिढ़कर जापानी अधिकारियों ने 1825 ईस्वी में यह आदेश दिया कि यदि कोई विदेशी जहाज अथवा नाविक जापान में उतरेगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसके साथ ही जापानी नाविकों तथा मछुओं को भी हिदायत दी गई कि वे विदेशी लोगों से किसी भी प्रकार का संपर्क ना रखें और जो भी विदेशी जापान के तट पर पाया जाए उसे बंदी बनाकर वहीं मार दे। इस प्रकार रूस तथा ब्रिटेन के प्रयासों के फलस्वरूप जापान की नीति में कोई परिवर्तन आने के स्थान पर और अधिक दृढ़ता आई। जापान किसी भी मूल्य पर विदेशियों को जापान में व्यापार करने की अनुमति देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह पहले ही विदेशियों के साथ व्यापारिक परिणामों को भुगत चुका था, अतः अब वह उनकी पुनरावृत्ति नहीं चाहता था। अमेरिकी प्रयास। 18वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जापान में अमेरिका की रुचि बढ़ रही थी, क्योंकि प्रशांत महासागर में उसकी व्यापारिक गतिविधि बड़े जोरों से बढ़ने लगी थी। अमेरिकी जहाज मछली पकड़ने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर में घूमने लगे थे। मछली पकड़ते समय अमेरिकी जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते तथा बहकर जापानी सागर तट पर पहुंचते, तो जापानी उनकी किसी भी प्रकार की सहायता न करते वरन उनके साथ दुर्व्यवहार करते। मछली पकड़ते समय जापान के कुछ मछुए अमेरिकी तट पर पहुंच गए और अमेरिका की सरकार ने उन्हें बंदी बना लिया। जापान के साथ बातचीत का उचित अवसर जानकर अमेरिकी सरकार ने उन्हें अपने यहाँ शरण दी। इन मछुओं को जापान वापस भेजने के उद्देश्य से अमेरिका के मॉरियल नामक जहाज इंग्लैंड और चीन के मार्ग से जापान भेजा, लेकिन जैसे ही यह जहाज नागासाकी के तट के निकट पहुंचा, जापानियों ने बमबारी आरंभ कर दी, अतः इस जहाज को अमेरिका वापस आना पड़ा। 1840 ईस्वी में दो अमेरिकन जहाज योदो की खाड़ी में भेजे गए ताकि जापान के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए जा सकें, लेकिन जापान की सरकार ने अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के व्यापारिक संबंध अथवा राजनीतिक संबंध स्थापित करना अस्वीकार कर दिया। कोमोडोर पेरी का आगमन। अमेरिका ने जापान के साथ संबंध स्थापित करने के अनेक प्रयास किए और हर बार उसे असफलता ही मिली। इन असफलताओं के बावजूद उसने साहस नहीं छोड़ा और जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को और अधिक महत्व प्रदान करने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वास्तव में इस समय अमेरिका पश्चिमी देशों की ओर देख रहा था, ये किस प्रकार जापान में अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने को तैयार हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका को यह भी ज्ञात था कि पश्चिमी देशों ने 1842 ईस्वी से 1852 ईस्वी तक किस प्रकार चीन पर अपनी व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित किया तथा वे निरंतर चीन पर अपने प्रभाव में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे थे। उसको इस बात का भी आभास था, चीन के साथ पश्चिमी देशों के व्यापारिक संबंध स्थापित हो जाने के पश्चात जापान अधिक समय तक इन देशों के प्रभाव से बचा नहीं रह सकता है। इस प्रकार की स्थिति में अमेरिका ने जापान के साथ संबंध स्थापित करने में देर करना उचित नहीं समझा। 1853 ईस्वी में अमेरिकी नौसेना के अधिकारी कोमोडोर मैथ्यू कलब्रेथ पेरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने जापान भेजा। पेरी अफ्रीका और चीन का चक्कर काटते हुए 4 युद्ध पोतों के साथ युद्धों की खारी में उतरा और जापान के अधिकारियों से प्रार्थना की कि वे जापान के बंदरगाहों में अमेरिकी युद्ध पोतों को ठहरने की सुविधा दे। उसने उपहार स्वरूप पश्चिमी तार और रेल व्यवस्था के 2 नमूने भेंट किए, साथ ही जापान के सम्राट के नाम एक पत्र भी दिया। इसके उपरांत वह वापस चला गया, परंतु जाने के पूर्व जापानियों को चेतावनी दे गया कि अगले वर्ष तक वह अधिक शक्तिशाली बेड़े के साथ उत्तर लेने आएगा। फरवरी 1854 ईस्वी में कोमोडोर पेरी 3 जहाज और 5 अन्य यान लेकर पुनः आ पहुंचा। कानागावा की संधि के अनुसार शिमोदो तथा होकोदेते में अमेरिकी जहाजों को कोयला आदि सामान लेने तथा कुछ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई। शिमोदा में अमेरिकी वाणिज्य दूत के रहने की भी व्यवस्था की गई। जहाज के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर बहकर आए हुए नाविकों और यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने तथा उन्हें सामान लौटाने की भी बात पक्की हो गई। दोनों देशों के प्रतिनिधियों के आदान प्रदान की भी व्यवस्था की गई। यह भी निश्चित किया गया कि जापान में अन्य देशों को जो भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी वे संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने आप उपलब्ध होंगे। यूरोपीय देशों से संधियां। इस प्रकार अमेरिका के प्रयत्नों से जापान का द्वार विदेशियों के लिए खुल गया और अब उस द्वार से विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए अन्य पश्चिमी देश भी आ गए। शीघ्र ही अन्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी कोमोडोर पेरी का अनुसरण करने जापान पहुँचे और जापान के साथ संधि करने में सफल हुए। अक्टूबर 1854 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी ने जापान के साथ संधि कर ली। फरवरी 1855 ईस्वी में रूस के साथ भी संधि हो गई। डच अभी तक नागासाकी की सीमा तक ही सीमित थे, परंतु अब डचों को भी नागासाकी सीमाओं से मुक्ति मिल गई। जनवरी 1856 ईस्वी में उनकी भी जापान के साथ संधि हो गई। सर्वाधिक प्रिय देश की व्यवस्था के फलस्वरूप हर संधि चारों देशों के लिए लाभकारी हो गई और अमेरिका को भी कानागावा की संधि में मिले अधिकारों में वृद्धि हो गई। इस प्रकार 1856 ईस्वी तक इन चारों राज्यों को जापान में विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गए। जापान के संन्यास और एकांतवास का अंत हो गया। कानागावा की संधि के अनुसार 1856 ईस्वी में टाउनसेंड हैरिस अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में जापान पहुंचा। उसने जापानी अधिकारियों से संपर्क स्थापित करके उन्हें समझाया कि पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करने में ही जापान का कल्याण है। हैरिस को अपने उद्देश्य में सफलता मिली और जापान की सरकार अमेरिका के साथ दूसरी संधि करने को सहमत हो गई। 29 जुलाई 1858 ईस्वी में जापान तथा अमेरिका के बीच एक अन्य संधि हुई। इस संधि के अनुसार यह तय किया गया कि शिमोदा और होकोदेते के अतिरिक्त कानागावा तथा नागासाकी तुरंत ही व्यापार के लिए खोल दिए गए तथा नाइगेता, हयोगी, को क्रमशः 1860 ईस्वी तथा 1863 ईस्वी तक धीरे धीरे खोलने की व्यवस्था की गई। येदो और ओसाका में विदेशियों को रहने की आज्ञा भी दे दी गई। आयात तथा निर्यात करों की मुनासिब दरें निश्चित की गई। अमेरिकियों को जापान में अपने कानून के अंतर्गत रहने का अधिकार दिया गया। अमेरिका ने जापान को जहाज, हथियार तथा तकनीकी विशेषज्ञ देने का वचन दिया। दोनों देशों ने अपने अपने प्रतिनिधि तथा दूत रखने का निश्चय किया। अमेरिकियों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी गई। 4 जुलाई 1879 को संधि को दोहराने की शर्त रखी गई। इन संधि के किए जाने के कुछ ही सप्ताह के अंदर डचों, रूसियों, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों से भी इसी प्रकार की संधियां की गई। सामूहिक रूप से इन संधियों को 5 जातियों की संधियां के नाम से जानते हैं। इन संधियों के कार्य रूप में आने के पूर्व ही विदेशी व्यापारी कानागावा के निकट योकोहामा में बसने लगे और कालांतर में मछली पकड़ने वालों का यह गांव जापान का प्रमुख बंदरगाह और केंद्र बन गया। संधियों का परिणाम। इन संधियों ने शताब्दियों से बंद जापान के द्वार विदेशी व्यापार के लिए खोल दिए और जापान के एकांतवास का अंत हो गया। जापान में विदेशियों के प्रवेश की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है, इसके लिए ना तो कोई लड़ाई लड़ी गई, ना कोई क्षेत्र दबाया गया, ना छीना झपटी अथवा मार काट हुई। यहाँ चीन के इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं हुई। इसका कारण जापानी समाज की समन्वयशीलता और जापानी अधिकारियों की दूरदर्शिता थी। लेकिन जापान को एक तात्कालिक घाटा अवश्य हुआ। चीन की भांति जापान में भी विदेशियों को न्याय, शासन और आयात कर से मुक्ति मिल गई। यह राज क्षेत्रातीत का सिद्धांत ही था जिसने जापान की प्रभुसत्ता को सीमित किया, लेकिन अन्य मामलों में वह चीन से बिल्कुल भिन्न था। जापान का द्वार खुलना उसके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। जापान ने पश्चिमी देशों की शक्ति के रहस्य को समझा और उसे अपनाने के लिए व्याकुल हो उठा। पश्चिम की उन्नत सभ्यता को अपनाने में उसने किसी प्रकार का संकोच अनुभव नहीं किया, जैसा कि चीन में रूढ़िवादियों ने किया था। पाश्चात्य देशों के संपर्क में आने से जापान के सर्वांगीण विकास का द्वार खुल गया और कालांतर में विश्व की एक महान शक्ति जापान बन सका। कुछ ही समय में वह पाश्चात्य देशों के स्तर में आ गया और उसकी गणना विश्व की प्रमुख शक्तियों के रूप में होने लगी। जापान के द्वार खुलने का एक अन्य परिणाम भी हुआ। इसके कारण सोगुन की ख्याति को बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि वह पश्चिम के दबाव के सामने नतमस्तक हो गया था। इसी कारण जापान में यह मांग होने लगी कि सोगुन के प्रभुत्व का अंत करके सम्राट को देश का वास्तविक शासक बनाया जाए। अंततः इस मांग ने जोर पकड़ा और 1868 ईस्वी में देश में एक रक्तहीन क्रांति हुई जिसने राज्य व्यवस्था में परिवर्तन करके सम्राट की शक्ति का पुनः उद्धार किया। यही मेजी पुनर्स्थापना थी। विदेशियों के आगमन और उनके दबाव की जापान में विविध प्रतिक्रियाएं हुई। यह सत्य है कि जापान में भी पुराणपंथियों तथा रूढ़िवादियों का अभाव न था और उन्होंने पश्चिम के साथ बढ़ते संपर्क का विरोध किया, लेकिन उनका विरोध कारगर नहीं हुआ। इसी समय वहां एक दूसरी विचारधारा भी प्रकट हुई जिसने प्राच्य नैतिकता और पाश्चात्य विज्ञान के समन्वय पर जोर दिया और पश्चिम का सामना करने के लिए उसी के साधनों को अपनाने पर बल दिया। यह वर्ग जापान की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन चाहता था। उसका विचार था कि जापान की जनता को पश्चिमी देशों की भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए उनके ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए तथा उनकी सभ्यता की सभी नवीन और उत्तम बातें तुरंत अपनानी चाहिए। ये पश्चिमी विज्ञान और युद्ध विद्या को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। इस समय जापानियों का एक तीसरा दल भी था जिसका मूल मंत्र जापान का पूर्ण पश्चिमीकरण और आधुनिकता था। ये पाश्चात्य जीवन शैली को पूर्ण रूप से अपनाना चाहते थे। इस विचारधारा के समर्थकों का कथन था, जापान में अपने आप को अनुकूल ढालने और पश्चिमी जगत के बराबर खड़ा होने की विलक्षण क्षमता है। वे जापान को विरोधाभास की स्थिति में रखने के प्रबल विरोधी थे और उनका विचार था कि पुरानी रूढ़ियों से चिपटे रहना तथा साथ साथ नई संस्कृति को अपनाए रहने से जापान को कोई लाभ नहीं होगा। जापान को दो में से किसी एक मार्ग को ही चुनना है। पश्चिमी जगत से संपर्क स्थापना के उपरांत जापान में इसी विषयधारा की और विचारधारा की विजय हुई तथा 1868 ईस्वी में मेजी पुनर्स्थापना इसी प्रवृत्ति का परिणाम था।